गुरु को प्रणाम है। हम कुछ भी कार्य करें, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उससे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। तो ये गुरु को प्रणाम है, और कैसा प्रणाम है इसको हम लोग देखेंगे। पहले लाइन है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। ओम, हम लोग देखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में कोई भी कार्य प्रारंभ होने से पहले, कोई मंत्र प्रारंभ होने से पहले इस ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। ये ओम शब्द भगवान की अंतरंग शक्ति और जीव शक्ति का संबोधक है। उपनिषदों में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है, अ उ और म, इन तीन शब्दों से या कारों से, जैसे इसको ओंकार कहते हैं, तो इससे ये शब्द बनता है। और इसकी व्याख्या उपनिषद करते हैं, अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैकनायके, उकार उच्यते राधा मकार जीववाचकः। वो कहते हैं कि अ उ और म अर्थात अकार उच्यते कृष्ण, अकार शब्द का अर्थ होता है कृष्ण, सर्वलोकैकनायके, जो कि सभी लोकों के नायक हैं अर्थात स्वामी हैं, सर्वलोकैकनायके। उकार उच्यते राधा, और फिर उनकी अंतरंग शक्ति को संबोधित किया गया है, और मकार जीववाचकः, और मकार अर्थात जीव शक्ति को संबोधित किया गया है। तो ये जो ओम शब्द है, ये कृष्ण उनकी अंतरंग शक्ति और उनकी तटस्था शक्ति जीव इसको संबोधित करते हैं। अर्थात सारा आध्यात्मिक जगत इसमें आ जाता है। कृष्ण, वैसे तो कृष्ण शब्द में ही सब कुछ आ जाता है, कृष्ण उनकी अंतरंग शक्ति और जीव जो कि उनकी तटस्था शक्ति है। तो इसलिए ये शब्द ओम हम लोग देखते हैं कि हर वैदिक मंत्र के पहले इसका उच्चारण होता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। ये एक प्रणाम भी है और ये प्रार्थना भी है। प्रणाम की दृष्टि से देखें तो ये हम लोग प्रणाम उस गुरु को कर रहे हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने मुझे, जो कि अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान या अर्थात अज्ञान, इस भौतिक जगत का ज्ञान हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य व्यक्ति को अज्ञानी कहते हैं। तो अज्ञान में मैं जो पड़ा हुआ था, अंधकार में जो पड़ा हुआ था, तिमिर और अंधस्य, ये दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तिमिर अंधस्य अर्थात तमोगुण में, अंधकार में, तमस में पड़े हुए व्यक्ति के लिए संबोधन है। तो इसलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो मेरी जो आंखें हैं, मैं अंधा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार में था, अज्ञान में था, तमस में था, लेकिन ज्ञानांजन शलाकया, तो गुरु ने ज्ञान के अंजन प्रदान किए हैं। ज्ञान के अंजन अर्थात ज्ञान का अंजन, हम लोग आंखों में अंजन लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सुरमा, काजल, काजल। तो ज्ञान का काजल या ज्ञान का अंजन लगाकर मेरी आंखों को खोल दिया है। ज्ञानांजन शलाकया, शलाकया ये शब्द एक ऐसे चीज को भी सूचित करता है, शलाका एक शब्द होता है जिससे आंखों का ऑपरेशन किया जाता है, आंखों में वो काजल लगाया जाता है, दोनों चीजें के लिए। तो शलाकया चक्षुरुन मिलितम येना, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं, चक्षु अर्थात आंखें जो बंद थी अंधकार में। तो इसका पूरा सार इस प्रकार है कि मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को, जो गहन अंधकार में पड़ा हुआ था, उसको ज्ञान के अंजन के द्वारा या ज्ञान की रोशनी के द्वारा ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरी आंखों को खोलते हुए मुझे अंधकार से बाहर निकाला है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये पहला मंगलाचरण का श्लोक है। आप में से कोई इसका अर्थ बोलेंगे अभी जो हमने बोला? कोई भी अभी जो बोला वही उसको दोहराए। यस सर। मैंने तो हिंदी में बोला था, मराठी में बोलना नहीं। ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात, मराठी समझ में आती है। माता जी हमें कोई एक अर्थ बताइए अभी जो कहा था। परमात्मा नहीं, परमात्मा भी नहीं है, नहीं अभी भगवान नहीं है, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ओम तो भगवान का सूचक है। आप बोल सकते पढ़ी हुई थे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे हम लोग गुरु को प्रणाम करके हम लोग इस चीज को प्रारंभ करते हैं। तो अच्छा है ना, ऐसे पूरा मंगलाचरण आना चाहिए ना सब लोगों को, है ना? अगली बार परीक्षा होगी, सब लोगों से पूछेंगे। तो ऐसे जब गुरु को प्रणाम करके हम लोग कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, विशेष करके आध्यात्मिक कार्य, चाहे वो भगवद गीता पर प्रवचन हो, भागवत पर हो, या फिर हमारा जप हो, हमारी तपस्या हो, हमारा अध्ययन हो, तो हमें एक शक्ति प्राप्त होती है गुरु की या पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा की, और इस शक्ति के बल पर हम लोग अपने आध्यात्मिक कार्य कर पाते हैं। हमारे अंदर कोई बल नहीं है आध्यात्मिक कार्य करने का। वैसे तो हमारे अंदर ये भी योग्यता या बल नहीं है कि हम लोग भगवद गीता भागवत को स्पर्श कर सकें, लेकिन जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु की शरण जाते हैं, तब फिर उनकी शक्ति के द्वारा हमें ये योग्यता प्राप्त होती है कि हम लोग भगवान के नाम को, भगवान की महिमा को, भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को समझ पाते हैं। दरअसल भगवान के नाम का जप करने के लिए भी अधिकार चाहिए, बिना अधिकार के कोई जप नहीं कर सकता भगवान का। तो श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य ये अधिकार हमें प्रदान करते हैं। योग्यता ना होते हुए भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त होता है। हरे कृष्ण महामंत्र और वेदों में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र ही वेद हैं। और इसको कैसे समझना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और वेदों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान एक समान है, और इसीलिए महामंत्र और वेदों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए जब हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, वेदों के सार का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन इस उच्चारण को करने के लिए योग्यता और अधिकार हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करके हम लोग फिर आगे, क्योंकि ये जो अंजन, ज्ञानांजन, ज्ञान का अंजन जो गुरु प्रदान करते हैं, उससे हम लोग चीजों को उनकी सही अवस्था में देख पाते हैं। असली विज्ञान या ज्ञान वो है कि जहां हम चीजों को उनकी सही दृष्टि में देखें, सही रूप में देखें, इस भौतिक जगत को उसके सही रूप में देखें, अपने आप को अपने सही रूप में देखें, कृष्ण को उनके सही रूप में देखें, ये असली ज्ञान है। और जब गुरु ये अंजन प्रदान करते हैं, ये ज्ञान प्रदान करते हैं अपनी कृपा के द्वारा, तब हम लोग बड़ी आसानी से चीजों को उनको सही दृष्टि में देख पाते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। हम लोग हर रोज गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। उनकी प्रसाद, प्रसाद अर्थात कृपा, संस्कृत में प्रसाद शब्द कृपा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जब उनकी कृपा होती है तब हमें भगवान भगवत प्रसाद हो भगवान की कृपा मिलती है। यस्य अप्रसादा, अगर उनकी कृपा नहीं है न गति कुतोपी, तो फिर हमारे लिए कोई गति नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले मंगलाचरण में गुरु को प्रणाम किया गया है। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे महाभारत में कि किस प्रकार अर्जुन उनको 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा एक छोटी सी गलती के कारण। गलती नहीं, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और धर्म के पालन के पूर्ण होने पर उनको ये दंड मिला। ये बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कि कभी कभी धर्म का पालन करने पर दंड दिया जाता है। साधारणतः ऐसा होता है कि धर्म का पालन नहीं करने पर दंड मिलता है, ये नियम है शास्त्रों का। लेकिन कई स्थानों पर हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बड़ी कड़ाई से नियमों का धर्म का पालन करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है? अर्जुन ने तो अपने धर्म का पालन किया, गायों की रक्षा करना उसका धर्म था क्षत्रिय होते हुए, तो फिर उसे क्यों दंड हुआ? उसे दंड इसलिए हुआ ताकि इतिहास ये जान सके, हम लोग आगे आने वाले लोग ये जान सके कि अगर धर्म का पालन करने में कोई भी कष्ट आए, कोई भी कठिनाई आए, तो धर्म के पालन से हिचकना नहीं चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया और अन्य कई उदाहरण शास्त्रों में हैं। तो इसलिए धर्म का पालन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मनुष्य जीवन के लिए। और इसमें कोई भी कष्ट आए, कोई भी कठिनाई आए, हमें रुकना नहीं चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए। तो अर्जुन ने धर्म का पालन किया और फिर आगे चलकर उन्होंने विवाह किए उलूपी से, चित्रांगदा से, और फिर प्रभास क्षेत्र में आए, कृष्ण से भेंट हुई और फिर कृष्ण के साथ कुछ समय रहे और सुभद्रा के प्रति आकर्षित हुए और सुभद्रा का हरण किया। ये हम लोग पिछली बार सुन चुके हैं। सुभद्रा का हरण भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था। हम लोगों ने आचार्यों की टीका सुनी थी कि कैसे वो एक सन्यासी बनकर रहे और फिर सुभद्रा का हरण करके ले गए और बाद में फिर सब कुछ ठीक ठाक हुआ। तो ये उन्होंने अपने वनवास के 11वें वर्ष में किया था। फिर एक वर्ष वे इधर उधर भ्रमण करते रहे, कई स्थानों में गए और फिर उसके बाद लौटकर इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर वापस आ गए। तो जब वो वापस आए सुभद्रा को लेकर, तो हम लोगों ने ये भी सुना था कि किस प्रकार द्रौपदी थोड़ी नाराज हो गई और फिर उन्होंने समझा बुझाकर नम्रता से, सुभद्रा की नम्रता के कारण द्रौपदी पिघल गई और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो जब कृष्ण को ये पता चला कि अर्जुन वापस आ गए हैं, तो कृष्ण, बलराम, उद्धव इत्यादि सब लोग बहुत सारे उपहार लेकर वे लोग यहाँ पर आए, इंद्रप्रस्थ में आए महाराज युधिष्ठिर के पास। बहुत सारे उपहार लाए थे, महाभारत में उसका वर्णन है कि कई रत्न, कई गायें इत्यादि बहुत सारे उपहार वो लेकर आए और उन्होंने उपहार दिए। हम लोग देखते हैं कि पहले के समय में ये एक प्रथा थी उपहार देना और उपहार स्वीकार करना। जहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने इतने उपहार दिए। जब वो एक दूसरे से केवल मिलने जाते थे तो बहुत सारे उपहार ले जाते थे इत्यादि। रामायण में तो इतना भी वर्णन है कि जब भरत के पास ये संदेश भेजा गया, संदेश उनको वापस बुलाने के लिए, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, दशरथ महाराज अपना देह त्याग चुके थे और भरत अपने ननिहाल में थे, तो वहां पर जब संदेश भेजा गया तो उस समय भी उपहार भेजे गए उनके लिए। और फिर जब भरत वहां से वापस आए तो कई उपहार वहां से लेकर आए। तो ये उपहारों का देना ये एक नियम है जिससे प्रेम बढ़ता है। रूप गोस्वामी बताते हैं, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्यति प्रच्छति भुंजते भोजयते चैव षड्विधः प्रीति लक्षणम्। प्रीति के, प्रेम के ये 6 लक्षण हैं। ददाति अर्थात देना, प्रतिग्रहणाति और लेना, उपहार देना और उपहार लेना, ये नियम है। अगर हम एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ उपहार देने चाहिए और उपहार लेने चाहिए। ये भक्तों के लिए रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि इससे आपस में षड्विधा प्रीति लक्षणम, प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। तो कृष्ण और बलराम बहुत सारे उपहार लेकर आए। फिर बहुत स्वागत हुआ जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो उन्होंने नकुल सहदेव को राज्य के बाहर, राज्य की सीमा पर भेजा कि वहां पर स्वागत करो उनका। तो राज्य के बाहर सीमा पर नकुल सहदेव बहुत सारे अपने मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ गए वहां पर स्वागत करने के लिए। और फिर जैसे ही कृष्ण बलराम ने नगर में प्रवेश किया तो जितने भी लोग थे, जितने भी वासी थे, सारे नागरिक बाहर आ गए कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए। कैसा भाग्य होगा उन नागरिकों का, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उनके भाग्य की, कि जो कृष्ण को देख रहे थे, बलराम जी को देख रहे थे। दोनों में अंतर नहीं है, दोनों भगवान हैं। और उनकी कांति ऐसे बताते हैं कि मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य चमक रहे हो। ब्रह्म तेज जिसके प्रति बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी आकर्षित हो जाते हैं, वो केवल कृष्ण के शरीर की कांति है। तो ऐसे कृष्ण जब नगर में प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक है नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं, और सारे नागरिक उनको देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है। दरअसल ये वर्णन भागवत में कई स्थानों पर आता है कि जहां भी कृष्ण जाते थे तो वहां भीड़ हो जाती थी, लोग देखने के लिए आते थे उनको। जब कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया तो बड़े विस्तार से भागवत में वर्णन है कि कैसे कैसे लोगों ने देखा, अलग अलग भावों में लोगों ने कृष्ण को देखा। जो बड़ी गोपियां थी, बड़े लोग थे मथुरा के, वे लोग वात्सल्य भाव से देख रहे थे। जो अन्य गोपियां थी वो माधुरी भाव में देख रही थी, और वो सोच रही थी कि कितना भाग्य है वृंदावन की गोपियों का कि सदैव इनके दर्शन करती हैं, और हम लोग यहाँ इन महलों में रहकर कोई लाभ नहीं है। वो गांव अच्छा है, वो गाय अच्छी हैं, वो गोबर अच्छा है, क्योंकि वहां कृष्ण के दर्शन होते हैं। और यहाँ इन महलों में, रत्न जड़ित महलों में रहकर क्या लाभ है कि हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती हैं। और जो अन्य उनके समान उम्र के थे, वे लोग उन्हें मित्र के समान देख रहे थे। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग लोग कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। कृष्ण वही थे एक, लेकिन रूप अलग अलग हो गए सबके लिए। कोई उन्हें पुत्र के रूप में देख रहा था, कोई मित्र के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में। कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सबको संतुष्ट कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो सबको संतुष्ट करे, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में है, सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए इच्छा करने से पहले पूरी कर देते हैं। तो वहां पर भी मथुरा में उन्होंने सबको संतुष्ट किया, जितने भी लोग थे। और ऐसे ही जब यहाँ युधिष्ठिर महाराज की नगरी में प्रवेश किया कृष्ण और बलराम ने, हम उनके साथ बहुत सारे अन्य लोग भी थे, उनके मंत्री अक्रूर जी आए थे, उद्धव जी आए थे, फिर सब भी थे, बहुत सारे रथ, हाथी इत्यादि। लेकिन लोगों ने दर्शन किया कृष्ण का और बलराम का, क्योंकि वे तो केवल उनका ही करना चाहते थे। और जब महल में उन्होंने प्रवेश किया तो स्वयं युधिष्ठिर महाराज भाग कर गए। और उस समय कृष्ण ने जो लोक नीति है उसका पालन करते हुए युधिष्ठिर महाराज के प्रणाम किया, क्योंकि वो बड़े हैं, भीम को प्रणाम किया और अर्जुन इत्यादि से गले मिलकर उनका स्वागत किया। कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो लोक नीति का पालन करते हैं, अर्थात जब मनुष्य बनते हैं तो मनुष्यों के लिए जो धर्म है उसका पालन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज उनके भक्त हैं, लेकिन वे उनको प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं उनके सामने। तो युधिष्ठिर महाराज फिर उनको अंदर ले जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और काफी समय तक कृष्ण और बलराम वहां पर रहते हैं बड़े आनंद से। फिर कुछ समय बाद बलराम जी और अन्य जो लोग आए थे वे वापस चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण वहां रह जाते हैं क्योंकि कृष्ण की इच्छा होती है कि अर्जुन के साथ कुछ समय बिताए। अभी तो बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत सारे लोग थे, वो अकेले समय नहीं बिता पा रहे थे, तो इसलिए सबके जाने के बाद वे लोग वहीं पर रहते हैं और कृष्ण और अर्जुन आपस में प्रेम का आदान प्रदान करते हुए समय बिताते हैं। और एक दिन वो नदी के किनारे जाने की इच्छा करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग कहीं बाहर जाएं राज्य से, तो सारी व्यवस्था की जाती है, कई लोग उनके साथ जाते हैं। और ऐसे में एक दिन वहां पर रहते हुए कृष्ण और अर्जुन ये एक ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां कोई नहीं होता, एक जंगल में चले जाते हैं और वहां पर जाकर बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अचानक देखते हैं कि एक बड़ा ही तेजस्वी ब्राह्मण आता है उनके पास। ब्राह्मण की कांति तपते हुए सोने के समान होती है, वैसे तो उसकी जटाएं होती हैं, कपड़े ऐसे ही फटे हुए पहने होता है, लेकिन दिखने में बड़ा तेजस्वी होता है। तो जैसे ही वो आते हैं कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े हो जाते हैं, ब्राह्मण का स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, फिर ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूं और मैं आपकी मदद चाहता हूं, मैं जो खाना चाहता हूं उसे आप अगर मेरी मदद करें तो मैं खा सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा खाता हूं। वैसे भी ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन बहुत प्रिय होता है, ब्राह्मणों का लक्षण है, ब्राह्मण मतलब भोजन प्रिय होना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत खाता हूं। तो उस समय अर्जुन ने पूछा कि आप बताइए, मैं आपको वचन देता हूं कि जो मैं आपकी मदद कर सकूंगा तो मैं करूंगा। तो ब्राह्मण कहता है कि दरअसल मैं अग्नि हूं, वो अग्निदेव होते हैं स्वयं, और वो कहते हैं कि मैं इस खांडव वन, जहां पर उस वन में वो खड़े होते हैं, इसको पूरा खाना चाहता हूं, उसका अर्थात खाना मतलब पूरा जलाना चाहता हूं, लेकिन मैंने कई बार प्रयास किया, ये संभव नहीं हो पाया, और जब तक मैं इसे खाऊंगा नहीं तो मुझे जो बीमारी हो गई है वो ठीक नहीं होगी। दरअसल अग्नि को भी एक बीमारी हो गई थी, वो भी देवता है। तो जब ऐसा वर्णन वैशंपायन मुनि ने किया तो जन्मजय ने पूछा कि अरे ऐसा क्या हुआ था अग्नि को, आप लोगों को याद है ना ये कथा कौन सुना रहे हैं? हमें महाभारत शुरुआत से शुरू करनी चाहिए फिर से, वैशंपायन मुनि। कितने लाख श्लोक थे महाभारत में? हाँ भूल गए सब लोग, किसी ने बताया पीछे 60 लाख। यस, तो उसका डिवीजन कैसे था, उसका विभाग 30 लाख श्लोक एक जगह बोले गए, 15 लाख एक जगह, 14 लाख एक जगह और 1 लाख एक जगह, है ना। तो ये जो वैशंपायन मुनि कह रहे हैं ये कौन से कितने लाख श्लोक हैं? देखिए ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, जो पहले का है सब भूलते जा रहे हैं। 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत यहाँ पृथ्वी पर वैशंपायन मुनि के द्वारा कही गई, और बाकी सब देव लोकों में, गंधर्व लोकों में देवल ऋषि के द्वारा, नारद ऋषि के द्वारा ये सारी कथाएं अन्य स्थानों पर हुई। तो आप लोग याद रखिए सब चीजें। तो फिर जन्मजय ने पूछा, जन्मजय कौन है? परीक्षित महाराज के पुत्र। वेरी गुड, आप लोग की स्मृति बहुत अच्छी है। तो जन्मजय ने पूछा कि अरे अग्नि को ऐसा क्या हुआ था, क्यों उसकी उसको क्या तकलीफ हो सकती है अग्नि को। तो उस समय वैशंपायन मुनि एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं राजा श्वेतकी की। वो कहते हैं इस राजा को यज्ञ करने का बहुत शौक था, सदैव यज्ञ करता रहता था, हमेशा 24 घंटे वो यज्ञ में लगा रहता था, और कई वर्षों तक उसने यज्ञ किया। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे वो थक जाते थे, वो भाग जाया करते थे, ये पकड़ पकड़ कर फिर ले आता था वापस उनको, कहता था जो चाहिए मैं देता हूं आप यज्ञ करो। महाभारत में वर्णन है कि कभी कभी उनके यज्ञ करते करते जो पुरोहित होते थे उनका मुंह काला हो जाता था इतनी अग्नि से, इतनी राख से, तो वो भाग जाया करते थे वहां से, वो फिर किसी और को पकड़ कर लाकर यज्ञ कराते। और एक समय ऐसा आया कि कोई यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं था, आप जो भी दो हम यज्ञ नहीं करेंगे। तो बड़े परेशान हो गए और उन्होंने फिर तपस्या की शिव जी की। किसी ने कहा कि तुम शिव जी से कहो, तो 6 महीने तक शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी ने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप आकर यज्ञ कराइए। शिव जी ने कहा मेरे पास ये सब कराने के लिए समय नहीं है, क्योंकि शिव जी कर्मकांड वगैरह में नहीं लगते हैं, उनके लिए जप बहुत है, भगवान का जप करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सबका उद्देश्य, चाहे कोई यज्ञ करे या कोई भी और हवन इत्यादि, इनका उद्देश्य है भगवान का स्मरण करना। तो फिर शिव जी ने कहा मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्वासा मुनि को कहा, जो कि शिव जी के ही अंश हैं, तो दुर्वासा मुनि से कहा कि आप इस यज्ञ को करवाइए। तो फिर कई वर्षों तक दुर्वासा मुनि ने यज्ञ करवाया। तो अग्नि कहने लगे कि इतने वर्षों तक वो घी पी पी कर मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है हजमा खराब हो गया है, कितना घी पिलाया उसने, तो इसलिए अभी उसके बाद मैं ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से मैंने पूछा कि मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी। तो उन्होंने कहा ये खांडव वन को खा लो, इसमें कई ऐसे जीव हैं जो देवताओं के विरोधी हैं, तो आपके खाने से ये सब समाप्त हो जाएंगे, देवताओं का भी भला होगा, आपका भी भला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बार यहाँ पर आया, मैंने प्रयास किया, करीब 7 बार उन्होंने खाने का प्रयास किया अर्थात जलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वहां के जो हाथी इत्यादि हैं बोले पानी भर कर लाकर उसको बचा लेते थे, या फिर इंद्र बचा लेते थे वर्षा के द्वारा। दरअसल उस वन में इंद्र का एक मित्र रहता था जिसका नाम था तक्षक, तक्षक जानते ना आप लोग, तो तक्षक वहां रहता था और इंद्र चाहते थे उसको कुछ हो नहीं, इसलिए वर्षा करके बचा देते थे। तो इसलिए अग्नि ने प्रार्थना की अर्जुन से, कृष्ण से, कि आप लोग मेरी रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा है आप ही बचा सकते हैं मुझे। तो अर्जुन ने वचन दिया कि ठीक है मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो उस समय फिर अर्जुन और कृष्ण रक्षा करने के लिए तो तैयार हुए, लेकिन अर्जुन ने अग्नि से कहा कि मैं रक्षा तो कर सकता हूं, मेरे अंदर बहुत शक्ति भी है, मेरे अंदर युद्ध कौशल भी है, लेकिन मेरे पास अच्छा धनुष नहीं है जो मेरी शक्ति के बराबर हो, और ना ही मेरे पास रथ है, ना ही मेरे पास तीर रखने के लिए तरकश है, तो मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? आप मुझे ये सब प्रदान कीजिए तब फिर मैं युद्ध कर सकूंगा, और साथ ही साथ कृष्ण भी हैं उनको भी आप प्रदान कीजिए। तो फिर उस समय अग्नि ने वरुण देव का स्मरण किया, और ये वो समय था जब अग्नि ने अर्जुन को उसका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उनको प्रदान किया। ये वरुण देव ने अग्नि को दिया और अग्नि ने फिर अर्जुन को ये प्रदान किया। तो उन्होंने उस समय कई चीजें दी, एक धनुष दिया जो गांडीव प्रसिद्ध धनुष अर्जुन का, और एक रथ दिया, जो रथ जिस पर चढ़कर उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको हराया, वो रथ अग्नि के द्वारा दिया गया था, तो वो रथ उनको प्रदान किया। और साथ ही साथ कभी ना खत्म होने वाले तीरों का एक तरकश दिया कि उसमें कभी तीर समाप्त नहीं होंगे। और कृष्ण के लिए उन्होंने 2 चीजें प्रदान की, एक सुदर्शन चक्र और दूसरा कौमुद की गदा, ये दोनों कृष्ण के हथियार हैं या अस्त्र हैं, तो इनको उन्होंने प्रदान किया। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया के पहले नहीं था कृष्ण के पास, ये तो शाश्वत संगी हैं कृष्ण के, उनके साथ ही होने चाहिए, तो अब कैसे प्रदान किया? तो हाँ कृष्ण के हैं, लेकिन इस लीला में अब कृष्ण के पास आए अग्नि के द्वारा, तो अग्नि ने वो सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा उन्हें उस समय प्रदान की। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब आप जाइए और इनको जलाइए, हम रक्षा करेंगे। तो उस समय जब वो जलाने लगे तो सारे जो प्राणी थे सर्प इत्यादि वो सब भागने लगे बाहर, और उस समय अर्जुन ने अपने तीरों से एक ऐसा वातावरण वहां बना दिया कि कोई भी प्राणी बाहर नहीं निकल पाया, सब वहीं पर जलकर मर गए। और जब ऐसा हो रहा था, बहुत अग्नि जल रही थी, तो इंद्र को पता चला, तो इंद्र भी आए, उन्होंने वर्षा करना प्रारंभ किया, लेकिन अर्जुन ने तीरों के द्वारा एक ऐसी दीवार बना दी कि एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आ पाया। ऐसे बहुत घमासान युद्ध हुआ उस समय, और उसके बाद इंद्र भी आए, अन्य देवता आए, युद्ध हुआ, प्रयास किया इंद्र ने अपने मित्र को बचाने के लिए, लेकिन वैसे उसका मित्र बच गया था, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि उस समय तक्षक वहां नहीं था, वो कुरुक्षेत्र गया हुआ था, ऐसे घूमने गए होंगे। तो फिर जब बहुत ज्यादा इंद्र भी अपना प्रताप दिखाने लगे, बड़े बड़े बादल, बड़ी कठोर वर्षा करने लगे, तो उस समय अर्जुन ने भी अपने अस्त्रों का इस्तेमाल किया। फिर अंत में आकाशवाणी हुई, इंद्र से कहा गया कि इंद्र चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र यहाँ नहीं है, वो सुरक्षित है। तो फिर इंद्र ने छोड़ दिया, इंद्र ने युद्ध नहीं किया, वो वापस चले गए। और फिर उस समय जितना भी जंगल था उसको उन्होंने पूरा खा लिया अग्नि ने। अग्नि संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए। इसमें केवल 6 लोग बचे इस अग्नि में, बाकी सारे लोग मारे, सारे जितने जीव थे प्राणी मारे गए। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि 6 प्राणी बच गए उस अग्नि में, बच गए अर्थात अग्नि की कृपा से उनको बचा लिया गया, या एक व्यक्ति अर्जुन की कृपा से बचा, और वो था मैदाना। तो मैदाना उस समय अग्नि से बाहर आया और वो भागने लगा, और कृष्ण ने अपना तीर उसके ऊपर चलाने के लिए पूरा अभ्यास मतलब अभी तैयारी हो गए थे कि अचानक वो अर्जुन की शरण चला गया। और जैसे ही मैदाना अर्जुन की शरण गया और अर्जुन ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूं, तो कृष्ण ने नहीं मारा, क्योंकि कृष्ण दिखला रहे थे कि अगर कोई भक्त की शरण जाता है तो फिर कृष्ण उसका कुछ नहीं करते, और जब कृष्ण नहीं करते तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी रक्षा कृष्ण करेंगे उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। तो फिर अर्जुन ने उसको अभय प्रदान किया, और इस तरह से मैदानव वो बच गया। मैदानव बचा था, तक्षक का पुत्र बचा था, और 4 ऋषि जो पक्षियों के रूप में थे वो बचे थे। ऐसे 6 जीव वहां पर उस अग्नि में बच गए, और बाकी सब मारे गए। और सबके मरने से अग्नि संतुष्ट हो गए, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई एकदम, और बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय वे आए और उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कृष्ण को, अर्जुन को, और मैदानव उस समय उनके साथ ही हो लिया। मैदानों की इच्छा थी कि वो कुछ सेवा करें, क्योंकि अर्जुन ने उनकी रक्षा की है, उनको प्राण दिए हैं, तो अर्जुन की कोई सेवा करना चाहते थे। तो फिर साथ साथ में ही रहे। कुछ समय बाद एक स्थान पर अर्जुन से उन्होंने पूछा कि मेरी बड़ी इच्छा है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो अर्जुन ने कहा तुम कृष्ण के पास जाओ, उनकी सेवा करो। तो फिर वो कृष्ण के पास गए। अब देखिए, जब कोई भक्त की सेवा करना चाहता है तो भक्त सोचते हैं कि इसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जब वो बेचारा भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान सोचते हैं इसे भक्त की सेवा करनी चाहिए। तो जब मैदानव अर्जुन के पास गया तो अर्जुन ने कहा कृष्ण के पास जाओ, उनकी सेवा करो। कृष्ण के पास गया तो कृष्ण सोचने लगे कि कैसे इसकी सेवा करनी चाहिए, इसको कैसे सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सेवा तो कराना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मेरे भक्त की सेवा हो। तो उस समय उन्होंने मैदानव से कहा कि आप युधिष्ठिर महाराज के लिए एक ऐसा महल बनाइए, अद्वितीय महल, जो ना पहले कभी बना हो और ना आगे कभी बने, और उसमें आप तीनों तरह के जो कला है उसका इस्तेमाल कीजिए, मनुष्य लोक की, देवलोक की और दानव लोक की, इन तीनों कलाओं का इस्तेमाल करके आप ऐसा महल बनाइए जो किसी ने कभी नहीं देखा। तो देखिए, कृष्ण ने अपने लिए सेवा नहीं दी, उन्होंने भक्त के लिए सेवा करवा दी। और युधिष्ठिर महाराज तो वैसे भी बहुत महान भक्त हैं। जिस समय वो राज्य कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन है कि ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्म, अर्थ, काम, जो भी पुरुषार्थ लोग इच्छा करते हैं धर्म के द्वारा, वो उनके राज्य में सब कुछ थे, सारी सुविधाएं थी उनके राज्य में, और लोग बहुत ही आदर करते थे युधिष्ठिर महाराज का, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का राज्य करने का या बड़े बड़े उत्सव मनाने का, बड़े बड़े यज्ञ करने का एक ही उद्देश्य था, कृष्ण का गुणगान। ये उनकी महानता थी। जब वो राज्य भी कर रहे थे और जब कृष्ण आए थे रहने के लिए तो बड़े बड़े उत्सव मनाते थे, वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को और लोगों को बुलाते थे कई स्थानों से। किस लिए? ताकि इस बात को स्थापित कर सकें कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये युधिष्ठिर महाराज का गुण था, इसीलिए भागवत में उन्हें हरिदास वरीय कहकर संबोधित किया गया है। युधिष्ठिर महाराज के अगर कार्यों को देखें तो युधिष्ठिर महाराज ने जब से वो राजा बने ऐसे केवल ऐसे कार्य किए जिससे कृष्ण का गुणगान बने। गोपियां कहती हैं, जब वो भागवत में हम लोग गोपी गीत में पढ़ते हैं, जब वो कृष्ण का गुणगान करती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तो वो कहती हैं कि ऐसे लोग हुए हैं युधिष्ठिर इत्यादि, नाम नहीं लेती हैं, लेकिन भूरी दर्शना, जिन्होंने अपने धन का इस्तेमाल आपकी कथाओं को सारे जगत में तीनों लोकों में फैलाने के लिए किया, इसीलिए उनको भूरीदा कहते हैं, भूरीदा चना। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे, उन्होंने अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा ऐश्वर्य कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थापित करने के लिए किया। राजसूय यज्ञ जब उन्होंने किया, इतना बड़ा यज्ञ था, सारे ब्रह्मांड से वहां पर लोग आए थे। दरअसल नारद मुनि ने गुणगान किया था युधिष्ठिर महाराज का, उन्होंने कहा कि आप कितने महान हैं, देखिए कितने सारे लोग आए हैं आपको देखने के लिए, सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए हैं, सारी पृथ्वी से आए हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से ऋषि मुनि नहीं आए हो, तो आप तो बड़े महान हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं कि ये जो सारे लोग आए हैं वो मुझे देखने नहीं आए, वो कृष्ण को देखने आए हैं। वो ये देखने आए हैं कि कृष्ण कैसे अपने भक्तों की सेवा करते हैं। अगले मंगलवार को हम लोग राजसूय यज्ञ का वर्णन करने वाले हैं कि कैसा यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने। तो कृष्ण ने वहां पर सबके चरण धोने की सेवा ली थी, जो भी आते ब्राह्मण इत्यादि उनको बिठाते, उनके चरण धोते, ये कृष्ण की सेवा थी। और जब अग्र पूजा का सवाल आया कि किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा अर्थात पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की अग्र पूजा की। हाँ, उसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उसकी चर्चा हम लोग अगले मंगलवार करेंगे, लेकिन कृष्ण की केवल इसलिए कि वो स्थापित कर सकें कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण की सेवा यही जीवन का लक्ष्य है। तो जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने इतनी सारी व्यवस्था की सारे जगत में कि जिससे वो कृष्ण को दे सके लोगों को, श्रील प्रभुपाद ने भी उसी तरह सारे जगत में इतनी बड़ी व्यवस्था की, 108 मंदिर बनाना, हजारों भक्त बनाना, कितने सारे ग्रंथ छापना, अन्य कितनी सारी चीजों को करना, केवल एक कार्य के लिए कि वो स्थापित कर सकें कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है, युधिष्ठिर महाराज ने उस युग में की, श्रील प्रभुपाद ने इस युग में की हम लोगों के लिए, इसीलिए इन सबको भूरीदा जना कहते हैं। ये भगवान के भक्त हैं जो भगवान को अपनी शक्ति से प्रकट करवाते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए कितने अच्छी तरीके से हम लोगों को समझा कर गए हैं, और जब थे तभी भी समझाते थे छोटी छोटी बातों पर। उनके सारे अगर हम लोग लीलाओं को देखें, उनके कार्यों को देखें, तो केवल इसलिए कि वो समझा सकें कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी सेवा हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब हम लोग भगवान की सेवा करें तो हमें बड़े ही ध्यान से, बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। भगवान की सेवा मिलना ये बड़े भाग्य की बात है, और इस सेवा में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, इस सेवा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अपराध नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम अपराध करते हैं तो हमारे हृदय के अनर्थ बढ़ जाते हैं, जब हम गलतियां करते हैं तो हमारे हृदय के अनर्थ बढ़ जाते हैं, जब हम पाप करते हैं तो हमारे हृदय के अनर्थ बढ़ जाते हैं, और जब हम पुण्य करते हैं तो भी हृदय के अनर्थ बढ़ जाते हैं। इसलिए केवल भक्ति करनी चाहिए जो हृदय में अनर्थों को नहीं बढ़ाती। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, इसलिए हम अपराध कर बैठते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है जांबवंत का, आप सबने नाम सुना है जांबवंत, जो इस सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, सबसे पहले प्रकट हुए। जांबवंत, इन्होंने भगवान के कई अवतार देखे, भगवान की कई लीलाओं को देखा। जांबवंत बहुत लंबी उम्र है उनकी, ऐसे शायद ही कोई अवतार होगा जो उन्होंने नहीं देखा। ये पहले दर्शक हैं, भगवान अगर कोई लीला करते हैं तो ये वहां पर रेडी रहते हैं देखने के लिए, तालियां बजाने के लिए। जब भगवान लड़ते हैं दो राक्षसों से तो वहां पर वो बैठकर तालियां बजा अकेले, लेकिन उनको बड़ा आनंद आता है जब वो भगवान को लड़ते हुए देखते। तो ऐसे भगवान के कई अवतारों को देखा, और जब वामन देव के रूप में भगवान आए तो उस समय भी जांबवंत थे, और भगवान ने विशाल रूप किया अपना, एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, दो पग, जगह नहीं बची तीसरा पग डालने के लिए। तो इतना विशाल रूप, आप सोचिए वो क्या रूप रहा होगा, और उनके जो चरण कमल थे उनका क्या आकार हो गया होगा, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कुछ समय पहले एक स्थान पर गए थे तो वहां पर किसी ने दिखलाया कि ये भीम के पांव का निशान है, तो इतना बड़ा था कि उसमें आराम से स्विमिंग कर सकते थे, वो भीम के पांव का निशान। तो जो भीम जो इस पृथ्वी पर रहते थे उनका ऐसा होगा, तो आप सोचिए जो वामन देव ने इतना विशाल रूप दिया था तो क्या हुआ। तो जब जांबवंत ने देखा तो बहुत खुश हो गए। दरअसल जांबवंत ये वृद्ध नहीं थे, ये बड़े युवा अवस्था में थे उस समय, और बहुत शक्ति थी इनके अंदर, बड़े शक्तिशाली थे। तो जैसे ही जांबवंत ने देखा कि भगवान ने इतना विराट रूप लिया है, तो उन्होंने उनके चरणों की प्रदक्षिणा करनी प्रारंभ की, वामन देव की। वामन देव के चरणों की प्रदक्षिणा मतलब सारे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर रहे थे, क्योंकि वामन देव का चरण ही इतना बड़ा था। तो उन्होंने 6 मिनट में 60 बार प्रदक्षिणा कर ली। आप सोचिए क्या स्पीड होगी उनकी, कितना किलोमीटर प्रति घंटा वो आप निकालते रहिए, वो शायद निकलेगा नहीं कभी। तो 6 मिनट में इतना उनका शक्ति थी, युवावस्था में थे, बहुत शक्तिशाली थे, तो बड़े खुश भी थे, बड़े आनंद में थे, भगवान का ऐसा रूप देख रहे हैं, वामन देव को उन्होंने देखा ऐसे। तो 6 मिनट में 60 चक्कर लगा लिए प्रदक्षिणा घूम 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 करके, और बड़े प्रसन्न हुए। तो जब प्रदक्षिणा करके आ रहे थे तो मेरु पर्वत वहां पर था, तो अपने आनंद में थे, खुशी में थे, आज मैंने भगवान का ऐसा रूप देखा है, प्रदक्षिणा की है उनके चरणों की। और आते आते उन्होंने मेरु पर्वत को जोर से एक लात मार दी, खुशी में, आनंद में, ऐसे नाराज होकर नहीं, अहंकार से नहीं, जोर से लात मार दी। मेरु पर्वत एकदम घबरा गई, ये तो मेरु पर्वत को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने जामन को बुलाया, इधर आओ, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे लात मार दी। जामन ने कहा ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान नहीं दिया, सप्तऋषि इत्यादि बड़े बड़े ऋषि आकर मेरी पूजा करते हैं और तुमने लात मार दी, और तुम्हें इतना अहंकार कि तुम क्षमा भी नहीं मांग रहे, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये श्राप भी बहुत होते हैं शास्त्रों में, लोग देखते हैं, इसलिए बड़ा संभालना चाहिए। देखिए देवी देवता या बड़े बड़े लोग सामने नहीं है श्राप देने के लिए, लेकिन मिलते जरूर होंगे हम लोगों को, इसलिए गलतियां जरा कम करनी चाहिए। अगर जांबवंत की गलती को देखें तो हम लोगों को तो दिन में कितनी बार श्राप मिलता होगा। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूं, तुम्हें अपने बल पर बहुत अभिमान हो गया है, अपनी युवावस्था पर बहुत अभिमान हो गया है, तुम बूढ़े हो जाओ। उनको बूढ़ा बना दिया, तो उस समय से वो बूढ़े हो गए। तो देखिए वैसे बूढ़ा होना भी एक श्राप है, श्राप दिया कि बूढ़े हो जाओ। तो फिर जामन वृद्ध हो गए, उन्होंने क्षमा याचना की, तो उस समय उनको कहा कि तुम चिंता नहीं करना, तुम्हें भगवान की हर लीला में भाग मिलेगा, जब रामचंद्र जी आएंगे उस समय भी तुम सहयोग करोगे उन्हें। तो यही कारण था, ये बात जामवन ने हनुमान जी को बताई थी, जब समुद्र पार करना था, सब लोग सोच रहे थे बैठे हुए समुद्र के इस किनारे पर कौन जाएगा, हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति को, तो हनुमान जी तो सोच रहे थे इतना विशाल समुद्र कैसे पार होगा, बाकी सब भी सोच रहे थे, और जामवंत के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो सबने जामवंत से कहा, हनुमान जी ने कहा आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आप जाइए। तो उस समय ये कथा उन्होंने सुनाई थी कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे श्राप मिला है तो मेरी सारी शक्तिहीन हो गई है। नहीं तो वो व्यक्ति जो कुछ ही मिनटों में सारे ब्रह्मांड के 60 चक्कर लगा, उसके लिए जरा सा समुद्र पार करना कौन सी बड़ी बात है। वो तो ऐसा है कि जैसे कोई वो लॉन्ग जंप मारता हो, उसको बोले यहां से वहां पांव रख दो केवल इत्यादि। तो जामवंत ने भी, हालांकि वो भगवान के भक्त हैं, इतने सारे अवतारों को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं, लेकिन जब गलती करते हैं तो फिर उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाता। तो इसलिए भक्ति में हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग भगवान की भक्ति करें। युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने अपना सर्वस्व केवल कृष्ण के गुणगान में लगाया। प्रभुपाद ने भी ऐसा ही किया, छोटी छोटी चीजें समझाई प्रभुपाद कैसे रहना चाहिए। जो पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद प्रचार करते थे शुरुआत में, तो वहां के जो उनकी शिष्याएं होती थी, माता जी इत्यादि, प्रभुपाद सन्यासी थे 70 साल के वृद्ध, और इन माता जियों को साड़ी पहनना भी नहीं आता था कि साड़ी कैसे पहनी जाती, कभी पहनी नहीं थी जीवन में उन्होंने साड़ी। तो फिर प्रभुपाद उनको वो भी सिखलाते थे। आप सोचिए 70 साल के वृद्ध सन्यासी, छोटी छोटी बात है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य जो पोस्ट में लेटर जाते हैं, बहुत सारे लेटर्स भेजने थे, पत्र भेजने थे, तो उनमें स्टैंप लगा रहे थे। और आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को स्टैंप लगाने की आदत कैसे होती है, तो भारत में तो बहुत ज्यादा है, वहां पर भी थी। तो वो उसी तरीके से लगा रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने देखा, आप समझ गए ना किस तरह से लगा रहे थे, प्रैक्टिकल दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट, ये तरीका नहीं है स्टैंप लगने, एकदम शुचि मुची मुची शुचि ने मुची, प्रभुपाद ऐसे समझाया करते थे, शुचि और मुची, ब्राह्मण का और शूद्र का, ले मुची ये ऐसा नहीं करते हैं, पानी लो और पानी लेके ठीक से लगाओ उसको। तो उसने कहा सॉरी सॉरी प्रभुपाद, गलती हो गई, ठीक है। तो फिर वो भक्त अपनी से उसकी सेवा ही वही थी, बहुत सारे पत्र भेजने थे, तो वो कई काफी समय तक बैठकर उस पर स्टैंप लगाकर भेजा करते थे। तो फिर प्रभुपाद चले गए, उसके बाद उसने थोड़ा सा पानी लिया। अब वो करीब 2 घंटे तक ये सेवा कर रहा था, और 2 घंटे तक वो पानी लगा लगा के पानी से अच्छे से लगा रहा था। धीरे धीरे पानी खत्म हो गया, अब थोड़े से स्टैंप बाकी थे, लगाता रहा, आखिरी स्टैंप बाकी था एक ही, और उसने डाला हाथ, पानी बिल्कुल नहीं, एकदम ड्राई सूखा था। तो उसने इधर उधर देखा आगे पीछे देखा, कोई नहीं था, इधर उधर ऊपर कहीं से कुछ नहीं है, दरवाजा देखा कोई नहीं है। तो उसने देखा ठीक है, उसने जैसे ही किया दरवाजे से प्रभुपाद अंदर आ गए। प्रभुपाद ने कहा मना किया था मैंने तुम्हें, वो बेचारा सोच रहा था इतने समय मैंने 2 घंटे अच्छे से सेवा की, केवल पानी लगा लगा के किया, तब प्रभुपाद नहीं आए। और जब एक आखिरी रह गया, तो खैर ये प्रभुपाद सिखलाते थे हम लोग सब, उस समय हम लोगों को सिखलाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों में भी हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर हम भक्ति में थोड़ी भी गलतियां करते हैं तो फिर वो हमारे लिए आगे चलकर बहुत कष्टप्रद होती हैं। तो इस जिस तरह युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण के गुणगान को, कृष्ण की सत्ता को, कृष्ण के महत्व को सारे जगत, कहना चाहिए तीनों लोकों में फैलाया, श्री प्रभुपाद ने भी भगवद गीता के द्वारा इस चीज का प्रचार किया। श्री प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा था वृंदावन के एक व्यक्ति को, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और उन्होंने कुछ टीकाएं लिखी थी, और उनकी टीका के ऊपर श्री प्रभुपाद ने पत्र लिखा था। तो पत्र काफी बड़ा था, लेकिन उसमें प्रमुखता श्री प्रभुपाद ने भगवद गीता के सार को प्रस्तुत किया, और उन्होंने 10 पॉइंट उसमें दिए, बहुत सुंदर वो पॉइंट हैं, हम लोग प्रयास करेंगे उसका चर्चा करने का। प्रभुपाद ने 10 पॉइंट लिखे उस पत्र में, और उन्होंने कहा कि ये भगवद गीता का सार है, ये सारी भगवद गीता इसमें आती है, उन समझा रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा, सबसे पहला जो विषय था उन्होंने कहा भगवान एक ही है, गॉड इज वन, और सब कुछ उनके अंदर है और वो सबके अंदर है। ये पहला पॉइंट भगवान श्रील प्रभुपाद ने उनको लिखा। तो देखिए कितने सुंदर बात है, भगवान एक ही है, सब कुछ उनके अंदर है और वो सबके अंदर है। भगवद गीता में भगवान इसको खुद कहते हैं, वैसे समझना कठिन है कि सब कुछ उनके अंदर है और वो सबके अंदर है। सब लोग इस कमरे में हैं और ये कमरा सबके अंदर है तो कठिन है समझना, लेकिन ये पहला विषय भगवद गीता के सार के रूप में श्रील प्रभुपाद 10 पॉइंट जो लिखे हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने पहले ज्ञान और फिर कैसे असली ज्ञान तक लाए और फिर उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, इन विषयों को उन्होंने दिया। बहुत सुंदर, दिखने में एक पत्र लगता है और 10 पॉइंट लगते हैं, लेकिन अगर उसको ध्यान से विश्लेषण करें तो पूरा सार भगवद गीता का उसमें दे दिया। तो सबसे पहला विषय ये लिखा। दूसरा उन्होंने लिखा कि अगर हम उन भगवान की, अभी तक कृष्ण का वर्णन नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर हम उन भगवान की सेवा करते हैं तो फिर सबकी सेवा हो जाती है, हमें अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा विषय, पहले समझाया कि भगवान एक ही है और सब जगह है, फिर दूसरा हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने बताया, और तीसरा उन्होंने कहा कि जब हम उनकी सेवा करते हैं तो क्योंकि हम उनके अंश हैं तो पूर्ण की सेवा करने से अंश की सेवा अपने आप हो जाती है। ये तीसरा विषय। अब वैसे हम समय कम होने के कारण जल्दी इन विषयों को बता रहे हैं, लेकिन आप बाद में जाकर, अगर आप लोग लिख लें तो अच्छा है, बाद में जाकर इस पर विचार कीजिएगा। सारी भगवद गीता का सार उन्होंने इसमें दे दिया, ये सारे श्लोक हैं भगवद गीता में, भगवान ने सारे विषयों को बताया और प्रभुपाद ने बड़े व्यवस्थित ढंग से इन 10 पॉइंट्स में उसको, सारे भगवद गीता के 700 श्लोकों को इस 10 पॉइंट में दे दिया। तो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने तीसरा बतलाया कि जो अंश हैं उनकी सेवा अपने आप हो जाती है। चौथा उन्होंने बताया कि ये जो अंश है, देखिए धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं, पहले तो बताया कि भगवान एक है, फिर बताया सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से अंश को संतुष्टि हो जाती है। अच्छा, अंश कौन है, अंश का फिर चौथा पॉइंट बताते हैं कि अंश और पूर्ण भगवान इनका शाश्वत संबंध है। तो फिर वो संबंध की बात करते हैं कि इन दोनों का शाश्वत संबंध है और ये अंश का कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे। अर्थात तीसरे पॉइंट में कोई पूछ सकता था कि ठीक है भगवान की ही क्यों सेवा करनी है, तो फिर प्रभुपाद ने समझाया कि ये अंश का कर्तव्य है क्योंकि उनका शाश्वत संबंध है। क्या संबंध है अंश और पूर्ण का, दास और स्वामी का, ये संबंध है। तो इस शाश्वत संबंध के होते हुए जीव को भगवान की सेवा में लगना चाहिए और यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जीव के लिए। हम लोग वैसे तो जीवन में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, लेकिन अगर भगवान की सेवा नहीं करें, भगवान की भक्ति नहीं करें तो लाभ क्या। श्रील प्रभुपाद आज सुबह प्रवचन में बहुत सुंदर तरीके से बतला रहे थे। श्रील प्रभुपाद को वो बोलने में बड़े बोल्ड थे, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे सारे साइंटिस्ट ये वैज्ञानिक ये महामूर्ख है, ऐसे ही ओपनली वो बोल रहे थे। वो कहते हैं कि जो कृष्ण को नहीं जानते, जो कृष्ण को नहीं मानते, वो महामूर्ख है, क्योंकि बड़ा सरल है समझना भगवद गीता के पन्नों में कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसी तरह यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शाश्वत संबंध है, और फिर वो बतलाते हैं कि कृष्ण को अपने आप को प्रकट कराने के लिए माया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि माया के प्रभाव में आकर कृष्ण प्रकट होते हैं, माया की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण स्वयं प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वे केवल उनके सामने प्रकट होते हैं जिनके सामने वो होना चाहते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, ना हम प्रकाश सर्वस्य मोह, ये जो माया का जगत है, माया के द्वारा जो मोह मोह में पड़ गए हैं उनके सामने मैं प्रकाश में अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। तो इसलिए इसको भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि अच्छा ये कैसे जान सकते हैं कि कृष्ण प्रकट होते हैं या कृष्ण के साथ संबंध है। प्रभुपाद कहते हैं केवल उनकी कृपा के द्वारा, कृष्ण का साक्षात्कार उनकी कृपा से होता है, और जब तक उनकी कृपा नहीं हो हम कितना भी मानसिक चिंतन करें, कितनी भी कल्पना करें, हम कृष्ण को नहीं जान सकते, हम भगवान को नहीं जान सकते। अब फिर वो कहते हैं कि भगवान कौन है, और वो कहते हैं कृष्ण यही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये सारे गीता के सार को प्रस्तुत कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि जीव का कर्तव्य है कि वो उनको समर्पण करे, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जीव उनका अंश है, उनसे शाश्वत संबंध है, इसलिए समर्पण करना चाहिए। तो भगवद गीता के आधार पर वो ये भी कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है। वो कहते हैं, हमने बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, कृष्ण इज इजीली अवेलेबल बाय द रिलीजन ऑफ लव। कृष्ण प्रेम के धर्म या रिलीजन ऑफ लव, ऐसा धर्म जो प्रेम पर आधारित है, उसके द्वारा पाए जा सकते हैं, अन्य किसी मार्ग से नहीं। ऐसा व्यक्ति जो उनकी भक्ति करता है, उनसे प्रेम करता है, वो उनको बड़ी सरलता से पा सकता है। और फिर अंतिम
विषय को लिखते हैं
कि सबसे बड़ी सेवा क्या है। अभी तक प्रभुपाद ने कहा सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, सबसे बड़ी सेवा क्या है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है कि हम लोग भगवान का जो संदेश है उसका प्रचार करें, ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान। तो ये 10 पॉइंट्स में उन्होंने, और ये स्वयं भगवान कहते हैं, ये प्रभुपाद ने नहीं कहा, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो ऐसे मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसीलिए भगवद गीता के श्लोकों को लेते हुए उसके सार को इन 10 पॉइंट्स में उन्होंने प्रस्तुत किया, ताकि कृष्ण की सत्ता को वो स्थापित कर सके, ताकि सबको ये बतला सके कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसी तरह युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा किया। और फिर जब मैदानव आए, मैदानव ने भी बहुत सी चीजें प्रदान की अर्जुन को, वो भी आए थे। दरअसल उस समय मैदानव तंत्र विद्या, जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी, उसका प्रदान करना चाहते थे, कृष्ण ने मना कर दिया। कृष्ण ने कहा ये विद्या अभी नहीं, ये कलयुग के लिए है, ये कलयुग में आएगी, अभी इसको मत प्रकट करो। तो फिर अर्जुन को उन्होंने शंख दिया, जो अर्जुन का शंख है, कोई जानते हैं उसका क्या नाम है? पांचजन्य कृष्ण का देवदत्त। तो देवदत्त ये शंख मैदानव ने उनको दिया उस समय, और भीम को उन्होंने गदा दी, जो गदा थी भीम की वो भी मैदानव ने प्रदान की थी। तो बड़ी विशेष गदा थी, और शंख भी बड़ा विशेष था, धनुष विशेष था। ऐसे बताते हैं कि ये जो गांडीव था वो 1,00,000 साधारण धनुषों के बराबर था, तो उसको धारण करने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, 1,00,000 साधारण धनुषों के समान, तो समान उसका बल था, मतलब उतनी शक्ति वाला था वो। तो इस तरह से मैदानव ने जब वहां पर आए तो फिर सभा का निर्माण प्रारंभ किया, बहुत सुंदर वो महल उनके लिए बनाना चाहते थे, सभागृह, और उन्होंने बनाया। बहुत से लोगों को उन्होंने बुलाया अपने लोक से, अन्य स्थानों से, और फिर उन्होंने उस सभा पर सभा का निर्माण किया, बहुत सुंदर बनाया उसको। उसमें कई ऐसी चीजें बनाई जो बड़ी विचित्र थी लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने, जैसे कृष्ण ने कहा था कि तीनों कलाओं को एक साथ लाए, मनुष्यों का, पृथ्वी के स्तर का, देवताओं का और दानवों की, तो इन तीनों की कलाओं को मिलाकर जब उन्होंने बनाया तो बड़ा अद्भुत सभागृह बना। और इस सभागृह में बहुत विशाल ये सभागृह था, बहुत सुंदर था, सब लोग कहां कहां से, बहुत दूर दूर से उसको देखने के लिए आते थे, कृष्ण भी थे वहां पर। तो फिर जब ये सभागृह हो गया और कृष्ण ने जाना चाहा, इसके थोड़े समय पहले सभागृह पूर्ण नहीं हुआ था, और कृष्ण ने कहा कि अब वो जाना चाहते हैं, तो पांडवों का हृदय टूट गया, क्योंकि जब तक वो कृष्ण के साथ थे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कृष्ण जाएंगे, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि अब उन्हें जाना है, तब उन्हें ध्यान आया कि अरे एक दिन तो कृष्ण जाएंगे, तो सब लोग बहुत दुखी हो गए और कृष्ण को छोड़ने के लिए कृष्ण तैयार नहीं थे सब लोग। फिर कृष्ण आए बाहर तक, कृष्ण जाने लगे तो बहुत सुंदर वर्णन है कि रथ तैयार खड़ा था, दारुक तैयार थे रथ लेकर, लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो युधिष्ठिर महाराज ने दारुक से कहा तुम हटो मैं रथ चलाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज रथ चलाने लगे, अर्जुन रथ पर चढ़ गए, कृष्ण तो थे ही, नकुल सहदेव भीम सब साथ में चलने लगे, पीछे सारी प्रजा चलने लगी, कोई कृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग ये वर्णन वृंदावन का भी पढ़ते हैं कि जब वृंदावन से अक्रूर जी आए थे कृष्ण को ले जाने के लिए और जब सब ब्रजवासियों को ये पता चला तो कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कृष्ण और बलराम खड़े हो गए थे रथ पर, लेकिन सारे जो ब्रजवासी थे कोई उसमें रस्ते में गिर गए, लेट गए कि हम जाने नहीं देंगे, किसी ने रथ के पहिए को पकड़ लिया, कोई रो रहे थे, कोई बेहोश हो गए थे, कृष्ण को जाने नहीं देना चाहते थे, ये प्रेम था उनका। और इसी तरह पांडवों का प्रेम था, पांडवों का प्रेम कृष्ण के लिए अत्यधिक तीव्र था और वो जाने नहीं देना चाहते थे। और पांचों का वैसे हम लोग साधारणतः पढ़ते हैं कि अर्जुन की बड़ी मित्रता थी या कृष्ण को अर्जुन प्रिय थे, हाँ ये सत्य है, लेकिन प्रेम सबका तीव्र था। भीम भी बहुत प्रेम करते थे, नकुल सहदेव बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए राजस्वी यज्ञ में सहदेव ने कहा था कि अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। और वहां पर फिर शिशुपाल इत्यादि भी थे, उसका बहुत सुंदर वर्णन है, अगली बार उस संवाद को कहेंगे, बहुत सुंदर संवाद हुआ था कि क्यों कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। तो फिर जब कृष्ण जाने लगे तो सब लोग चल दिए साथ में। अब कृष्ण थोड़े समय तक तो गए, फिर उन्होंने सबको रोक दिया, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा रथ रोक दीजिए, और फिर उन्होंने प्रार्थना की और उस समय कृष्ण झुक गए, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के चरण छुए, चरण छूने जा रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको उठा लिया और गले से लगाया, और सब लोग रो रहे थे, कृष्ण को जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन कृष्ण फिर जल्दी जल्दी अपने रथ पर बैठे और फिर दारुक से कहा कि वो रथ लेकर चल दे। तो फिर वो अपने नगरी को चले गए और यहाँ सारे जो पांडव थे बड़े दुखी हुए, क्योंकि जब तक कृष्ण थे तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि जाएंगे। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य एक बार बतला रहे थे कि जब तक श्रील प्रभुपाद थे तो कोई ये सोचते नहीं थे कि श्रील प्रभुपाद जाएंगे, वो कभी विचार नहीं करते थे, हाँ बस हैं श्रील प्रभुपाद रहेंगे। लेकिन जब ऐसा समय आया, इनफैक्ट उनकी एक शिष्या है नारायणी माता जी, वो बतला रहे थे कि वो लोग कुछ लोग उस समय मायापुर में थे, मायापुर में राधा माधव की सेवा कर रहे थे, और जब उन्हें समाचार मिला कि श्रील प्रभुपाद अपना अपनी इस पृथ्वी की लीला को समाप्त करके चले गए हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कई लोगों को फोन करके पूछा ये सही है, ये सही है, क्योंकि उनके मन में ऐसा था ही नहीं कि श्रील प्रभुपाद जाएंगे, वो सोचते थे वो बस रहेंगे, क्योंकि एक दो बार पहले भी ऐसा हुआ था और श्रील प्रभुपाद नहीं गए थे, इसलिए वो सोच रहे थे ऐसा नहीं होगा। तो देखिए अगर एक कृष्ण के एक भक्त के प्रति हजारों लाखों लोगों का इतना प्रेम हो सकता है तो सोचिए कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा, और जब कृष्ण जा रहे होंगे तो कैसी स्थिति में रहे होंगे वे लोग, कितना दुख उनको हुआ होगा। तो प्रश्न ये आता है कि फिर कृष्ण दुख क्यों देते हैं, उनके ही भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और कृष्ण चाहें तो अपना विस्तार करके कितने ही स्थानों पर रह सकते हैं, फिर कृष्ण ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों दुख देते हैं अपने ही भक्तों को, क्या आनंद आता है उनको दुख देने में। वृंदावन में थे, वृंदावन वासी तो बृहद भागवतामृतम के अनुसार पांडवों से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो वृंदावन में थे उनको छोड़कर चले गए, वे लोग भी रोते रहे, उनके तो प्राण थे वे, उनको छोड़ के चले गए, यहाँ पांडवों को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों करते हैं ऐसा भगवान। आचार्य समझाते हैं कि एक आनंद, ऊंचा आनंद प्रदान करने के लिए, ब्रजवासियों को उन्होंने छोड़ा एक ऊंचा आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान की भक्ति मिलन और विरह ये दो प्रकार से की जाती है। मिलन की भक्ति जब कृष्ण साथ में होते हैं, जब पास में होते हैं, और विरह की भक्ति जब कृष्ण नहीं होते, उनका स्मरण तीव्र हो जाता है, बार बार उनके साथ की हुई लीलाएं भक्तों को याद आती हैं, बार बार उन्होंने जो निर्देश दिए वो याद आते हैं। अर्जुन ने पूरी गीता को पुनः याद किया था जब कृष्ण नहीं रहे थे, उन संदेशों को याद किया कि हाँ कृष्ण ने मुझसे ऐसा कहा था। ये प्रेम होता है तो विरह में ये प्रेम बढ़ जाता है, और इसीलिए कृष्ण इस प्रेम को बढ़ाते हैं, और इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सबको कृष्ण की भक्ति स्थाने स्थित श्रुति गता तनु वाक मनो भी अपने तन से, अपनी वाचा से, अपने मन से करनी चाहिए। तन से हम कृष्ण को जीत सकते हैं तब कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, जैसे पांडवों के साथ रहे तो उन्होंने तन से जीत लिया। तनु वाक वाचा से जब हम कृष्ण का गुणगान करते हैं तो हम कृष्ण को जीत लेते हैं। मनो और मन, जब हम मन में कृष्ण का स्मरण करते हैं तो कृष्ण के मन को जीत लेते हैं। दो प्रकार हैं, एक भक्त अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी काया से कृष्ण को जीत सकता है, और दूसरा उसी से दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के ये बतलाते हैं कि हमें भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए, स्थान स्थित जिस स्थान में है, जैसे हैं, जो स्थिति में है भौतिक जगत में वैसे ही रहें, लेकिन तनु वाक मनो भी अपने तन को, अपनी वाचा को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ये उद्देश्य है हम सबका भक्ति में आने का, ताकि हम अपने आप को उस स्तर तक उठा सकें जहां ये इस चीज को समझ सकें कि भगवान के मिलन से ज्यादा विरह में आनंद है। गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने विरह में आनंद लिया। तो ये दो प्रकार की भक्तियां होती हैं, एक मिलन की और एक विरह की, जिसमें विरह की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हमें वो भक्ति प्रदान करने के लिए, वो भाव प्रदान करने के लिए, वो विरह भाव जिसमें प्रेम बहुत तीव्र होता है। तो ऐसी भक्ति के सार को, ऐसी भक्ति को श्रील प्रभुपाद ने हम सबको प्रदान किया है, और हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कृतज्ञता श्रील प्रभुपाद के प्रति दिखलाते हुए बड़ी गंभीरता से भक्ति करें, भक्ति के नियमों का पालन करें, अपने चेतना को, अपनी सत्ता को शुद्ध करें, और भगवान के भक्ति करते हुए अंत में भगवान के धाम गोलोक वृंदावन वापस जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के कोई प्रश्न?